मुफलिस से चोर बन रहा हूँ, पर इस भरी बाजार में चुराऊँ क्या? यहाँ वही चीज़ें सजी हैं जिन्हें लुटा कर मैं मुफलिस हो चुका हूँ। ये लिखी तो पहले की है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टरशिप हमने रिफ्यूज़ की थी, घर से चले गए थे, तो जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो उनको ये सुनाया था।
दुनिया में बहुत कम प्रधानमंत्री हुए हैं जो राजनेता होने के साथ साथ चित्रकार और कवि भी रहे हों। 38 साल की उम्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए, 40 के हुए तो लोकसभा में आ गए, 3 साल बाद वाणिज्य उपमंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र में वित्त मंत्री और 2 दिसंबर 1989 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। अगर आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति को दिशा देने वाले 5 नेताओं का नाम लिया जाए तो उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। हालांकि वो सिर्फ 11 महीनों तक ही प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पद छोड़ने के बाद भी उनका राजनीतिक महत्व कम नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मंडल राजनीति के आधार पर अपने आप को सेंटर स्टेज पर बनाए रखा, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने भारत के लोगों के बीच की दूरी को पाटने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी ने एक बार बीबीसी को बताया था,
11 महीने प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारतीय राजनीति पर जितनी बड़ी छाप उनने छोड़ी है सिवाय इंदिरा गांधी के और किसी ने नहीं बदला। इस नाते आप उनको स्वतंत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्णायक प्रधानमंत्री कह सकें।
लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनमानस भारतीय राजनीति में वीपी सिंह के योगदान को लेकर बुरी तरह से बटा हुआ है। कुछ लोगों के लिए वो सामाजिक न्याय के हीरो हैं, तो दूसरे लोगों के लिए भारतीय समाज को बांटने वाले विलेन। विश्वनाथ प्रताप सिंह को नजदीक से जानने वाले और चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय बताते हैं,
देखिए उस समय एक सोशल रेवोल्यूशन की जो वीपी सिंह की कोशिश थी उसकी जड़ में वो कोशिश है। हम भी जो पत्रकार हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, वो इसलिए हैं कि हम भी अपने जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के हित को हम पोषित करना चाहते हैं, और वो हम सब ज़्यादातर 80% हम अपर कास्ट के हैं, जिनको ये भ्रम था कि वीपी सिंह ने जो फैसला लिया मंडल कमीशन लागू करने का, मंडल कमीशन के अलावा वीपी सिंह के खिलाफ कोई एक बिंदु ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उनका समर्थन या विरोध किया जा सके, लेकिन मंडल कमीशन ने अपर कास्ट को जो समाज को रूल करता है उसने ये भावना बना दी कि ये अपर कास्ट के खिलाफ हैं और इन्होंने गरीबों को खासकर पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अवसर काटने हैं। ऐसा नहीं था, अपर कास्ट ने वीपी सिंह के खिलाफ माहौल बना दिया इसलिए क्योंकि वीपी सिंह का जो करप्शन के खिलाफ कैंपेन था या जो वो सरकारी फैसले ले रहे थे उससे बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। वीपी सिंह जब वित्त मंत्री थे तो ये कहावत थी कि उनके घर के 3 किलोमीटर के रेडियस से कोई बिजनेसमैन नहीं गुजरता था।
एक जमाने में राजीव गांधी के मैन फ्राइडे कहे जाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह को उनसे दूर होने में 2 साल का भी समय नहीं लगा।
वीपी सिंह जी राजीव गांधी की कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहते थे। राजीव गांधी ने उनको बहुत परस्यू किया, वित्त मंत्री बनाया तो उन्होंने राजीव गांधी से पूछा कि मेरे लिए लाइन क्या है। राजीव गांधी ने उनसे कहा कि एक भी किसी भी डील में हम मिडलमैन नहीं रखेंगे। तो उन्होंने फिर पूछा किसी भी डील में, रेहान साहब वीपी सिंह जी ने उसी को फॉलो किया और उसी को फॉलो करते हुए वित्त मंत्री के नाते उन्होंने देश के पूंजीपतियों के सामने सीमा रेखा बनाई। राजीव गांधी बहुत साफ दिल के आदमी थे जब वो आए थे और उनके दिमाग में एक आदर्श स्थिति बनाने की थी। वो बहुत सारी चीज़ों से अपरिचित थे क्योंकि वो कभी राजनीति में रुचि नहीं रखते, तो वो अपना हवाई जहाज उड़ाना और दोस्तों के साथ मस्ती करना यही उनका काम था। राजीव गांधी ने उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए और शायद वीपी सिंह को वो लाए भी इसलिए थे कि वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्ट्री को अच्छी तरह संभाल सकेंगे। राजीव गांधी अपने दोस्तों की वजह से धीरे धीरे अपने रास्ते से पलटने लगे और कुछ उनकी ससुराल का कनेक्शन, सोनिया जी का उसमें कोई हाथ था ऐसा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे एक मानवीय कमजोरी होती कि इटली से कोई अफसर आया, इटली से कोई बिजनेसमैन आया, उस राजीव गांधी मिल लिए, ससुराल का आदमी है, दैट्स ऑल। पर उन लोगों ने राजीव गांधी की सरलता का फ़ायदा उठाया और हिंदुस्तान में एक बड़े अभिनेता उनके मित्र थे ये सब बड़े खिलाड़ी नहीं थे, छोटे छोटे खिलाड़ी थे, लेकिन इन लोगों ने अपने उस छोटेपन को लेकर के राजीव गांधी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। लेकिन राजीव गांधी शायद इस संकोच में थे कि अगर मैं एक के लिए कुछ कहूँगा विश्वनाथ से तो मेरी इमेज खराब होगी, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। और मैंने एक बार वीपी सिंह से साफ पूछा, मैंने कहा कि अगर भाई साहब आपसे प्राइम मिनिस्टर कहते इसमें कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए आप देते, कहेंगे मेरे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे व्यक्तिगत कह देते मैं करता। लेकिन जब नहीं कहा, वीपी सिंह ने वही किया, लेकिन वो कुछ लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ गया, जो घूमते घूमते देश में इंप्रेशन बन गया कि राजीव गांधी ही इन सब के पीछे हैं। और जो बोफोर्स राजीव गांधी के पीछे चिपका है, सिर्फ 64 करोड़ का केस, वो आज तक लोगों के दिमाग में है, जबकि अब तो लोग 5 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ के घेरे में हैं। पर आप सोचिए 64 करोड़ के उस आरोप ने जो आज तक साबित नहीं हुआ, राजीव गांधी ने लिया, ये कहीं साबित नहीं हुआ। मैंने एक बार बैंक खातों की पूरी लिस्ट अपनी रिपोर्ट में छापी, मेरी किताब में भी है, लेकिन वो कहीं राजीव गांधी के पास नहीं पहुंचती है। 64 करोड़ जैसे मूव हुआ था, लेकिन राजीव गांधी के ऊपर वो 64 करोड़ आज भी चस्पा है लोगों के दिमाग।
राजीव गांधी और वीपी सिंह की दूरी का बारीक चित्रण पूर्व कैबिनेट सचिव बीडी देशमुख ने अपनी किताब एक कैबिनेट सेक्रेटरी लुक्स बैक में किया है।
फेयरफैक्स मामले से राजीव गांधी और वीपी सिंह के संबंधों में कड़वाहट शुरू हुई। उनका रक्षा मंत्रालय में तबादला कर दिया गया। वहां से उन्होंने HDW पनडुब्बी खरीद मामले पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने तब भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। मैंने राजीव को सलाह दी कि वीपी सिंह को क्यों ना अगले वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए। मेरा तर्क था कि वो इस पद के लिए पूरी तरह काबिल हैं और अगर उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है तो वो पूरे दिल से काम करेंगे और राजीव गांधी के खिलाफ कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं लेंगे। दुर्भाग्य से इस सलाह पर अमल नहीं हो पाया क्योंकि राजीव गांधी के कुछ सलाहकार उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर सबक सिखाना चाहते थे। जुलाई 1987 में उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया।
राजीव से मनमुटाव के बाद पहले उन्हें रक्षा मंत्री के पद से हटाया गया और फिर पार्टी की सदस्यता से भी। 1987 में उन्होंने जन मोर्चा की स्थापना की। जाने माने पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय बताते हैं।
भेल में एक रैली थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिल्ली से कार से हरिद्वार गए, भेल में रैली की और उसके बाद वो वापस आए। तो वापस आ रहे थे तब तक रुड़की में उनको सूचना मिली कि उनकी सदस्यता जो है कांग्रेस की अध्यक्ष ने निलंबित कर दी है। फिर उन्होंने रुड़की के बाद में जहाँ उनका अभिनंदन था वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में का एक वाक्य भूलता नहीं है और वो भूलने लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस से कोई निकाल नहीं सकता और मैं तो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट करके ही जाऊंगा अगर शरीर छोड़ता है तो। तो तब तक उनके मन में घोषित तौर पर तो कोई जनमोर्चा वगैरह बनाने का विचार नहीं था, लेकिन बाद में 2 अक्टूबर 1987 को उन्होंने अपने घर पर जनमोर्चा बनाया।
1989 में हुए आम चुनाव में राजीव गांधी की हार हुई और वीपी सिंह ने वामपंथियों और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन जिस ढंग से उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया उससे बहुत बदमस्की हुई।
इसमें वीपी सिंह जी का कोई दोष नहीं था, ये जो हुआ मैं आज भी मानता हूँ कि गलत हुआ। अगर चुनाव होता जैसे कि पार्टियों में होता है लीडरशिप के लिए, शायद ज़्यादा अच्छा होता। और उस समय मेरा मानना है कि वीपी सिंह लैंडस्लाइड विक्ट्री से जनता दल के लीडरशिप के चुनाव में जीतते। पर दरअसल इसके दो इंजीनियर थे, एक बिजूदा थे, बिजू पटनायक साहब, और एक अरुण नेहरू। इन लोगों ने ये प्लान किया कि चंद्रशेखर जी नहीं मानेंगे तो एक तरफ चंद्रशेखर जी को डॉज दें, दोनों को उन्होंने अंधेरे में रखा। वीपी सिंह को उन्होंने कहा कि देवीलाल जी को हम नाम हम प्रपोज करेंगे वहाँ पे बनाने के लिए, उनका देवीलाल जी को बना दीजिए। वही उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा कि देवीलाल जी को बनाएंगे। चंद्रशेखर जी व्यक्तिगत रूप से वीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री पद के ऊपर नहीं देखना चाह रहे थे। उसका कारण था कि वीपी सिंह जी के बड़े भाई संत बख्श सिंह उनके दोस्त थे। चंद्रशेखर जी का ये मानना था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चूंकि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया इसलिए उनका नैतिक अधिकार नहीं बनता है वो लगातार कांग्रेस के साथ रहे कि वो इस सरकार के मुखिया बने। पर बीजू पटनायक और अरुण नेहरू ने उनसे कहा और उन्होंने ही देवीलाल जी को तैयार किया कि देवीलाल जी हम आपको प्रधानमंत्री वो नेता पद के लिए चुनेंगे और आप विश्वनाथ को चुन लीजिएगा। इसमें न चंद्रशेखर जी का दोष था न वीपी सिंह का दोष था। इसमें ये दो जो बड़े राजनेता थे, ये इनका करिश्मा था। अगर ये पहले पता होता वीपी सिंह जी को तो वो सीधे तौर पे कहते नहीं चुनाव कराइए, चंद्रशेखर जी को ही बना दीजिए।
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल रिपोर्ट को धूल भरी अलमारी से निकालकर अचानक लागू किया, जो भारतीय मध्यम वर्ग को बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने एक बार बीबीसी से बात करते हुए मंडल आयोग को लागू किए जाने के फैसले पर अपनी बात रखी थी।
मंडल से राजनीति का जो है ग्रामर जो है वो बदल गया, और एक चेतना डिप्राइव सेक्शन में आई जो पावर स्ट्रक्चर में नहीं थे, उनको एक कॉन्शियसनेस आई, और हम समझते हैं ये कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल पार्टीज या इंडिविजुअल लीडर से बड़ी चीज़ आई है। हो सकता है कि कोई एक पिछले वर्ग का लीडर हारे जीते इलेक्शन, लेकिन उस पर ये नहीं लगाना चाहिए कि मंडल सफल हुआ या विफल हुआ, क्योंकि अगर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सोशल कॉम्पोजिशन देखें तो वो बदल रहा है, और पार्टी कुछ भी हो लेकिन डिप्राइव सेक्शंस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब बढ़ा, तो सोशल कंपोजिशन जो है डिसीजन मेकिंग बॉडीज का बदल रहा है।
लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके इस फैसले ने भारतीय समाज और राजनीति की दिशा बदल दी।
ये माना जाता है कि देवीलाल जी को काउंटर करने के लिए वीपी सिंह ने ये किया, इसमें कुछ सत्यता हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आज मैं उन दिनों को याद करता हूँ या राय साहब के दिमाग को समझता हूँ, राय साहब ने मंडल कमीशन की बात जनता दल के घोषणा पत्र में शामिल की थी। मुझे लगता है जब उनको ये एहसास हो गया कि अब ये सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, कुछ लोग हमारे खिलाफ चले जाएंगे या चंद्रशेखर जी की वजह से टपल डाउन हो जाएगी और बीजेपी भी नहीं चाहती है, लेफ्ट कितना सपोर्ट करेगा, उस दबाव में लोग मानते हैं कि रामविलास पासवान और शरद यादव का दबाव था वीपी सिंह के ऊपर देवीलाल का विरोध करने के लिए मंडल कमीशन लागू करें। मुझे लगता है कि इसमें आंशिक सत्यता है। पूरी सत्यता अगर मैं वीपी सिंह जी को जान पाया हूं तो ये थी कि वीपी सिंह जी समझ गए थे कि सरकार जाने वाली है, और जाने से पहले वो एक ऐसी चीज़ कर दें जो इतिहास बदल दे हिंदुस्तान का, और देखिए उसका नतीजा, हिंदुस्तान की आज की सारी लीडरशिप इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सेक्शन के हाथ में आई है, जिसको हम पिछड़ा और दलित कहते हैं, जितने भी हैं लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव या अब उनके पुत्र तेजस्वी या उधर अखिलेश, देवेगौड़ा, कुमार स्वामी, आज की जितनी लीडरशिप है, इस लीडरशिप का जो एक बदलाव हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्लास के रूप में, वो अपर कास्ट के हाथ से तो पावर चली गई है, तो ये जो परिवर्तन हुआ है तो मंडल कमीशन की वजह से हुआ।
विश्वनाथ प्रताप सिंह बुनियादी तौर पर एक कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी आदमी थे। मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर वीपी सार्वजनिक जीवन में उच्च मापदंड अपनाने के हमेशा कायल रहे। उनकी पत्नी सीता देवी बताती हैं।
He was not a difficult person to live with. Time से सारा अपना जो कुछ भी करना करते थे। उसके बाद पॉलिटिक्स में आने में उससे बहुत डिफरेंट हो गया था। पढ़ाई जब तक थी चार्ट से पढ़ते थे, चार घंटा अगर पढ़ाई करनी आफ्टर कॉलेज तो करके ही सोते थे, चार्ट बना रहता था, अगर 10 मिनट एक दिन कम हुआ तो 10 दिन दूसरे दिन उसको पूरा करते थे।
और जब प्राइम मिनिस्टर हो गए तब
तो पता ही नहीं रहता था कि कहाँ है, तब तो ऑफिस ही में थे, घर से तो थे ही नहीं कोई। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद बिजी रहते थे, रात के 1-2 बजे तक बिजी रहते थे, सुबह से सुबह उठते थे 8-8 बजे के करीब, 9 बजे टू गेट रेडी, एंड जब तक तैयार नहीं होते थे अपने फाइल्स देखते रहते थे, फिर ब्रेकफास्ट करके सीधे ऑफिस, और फाइल्स अपने घर पे लेके आते थे, फाइल्स बैठ के अपना सब वहाँ नहीं कर पाते थे तो घर पे करते थे। हाँ, लेकिन मेरे को ये इंस्ट्रक्शन था चश्मा नहीं लगाओगे कि तुम फाइल नहीं देख पाओगे, और दूसरा कोई फाइल्स को हाथ नहीं लगा सकता था जो घर पे फाइल्स आती थी। अब मेरा चश्मा रख दिया जाता था कि मैं फाइल्स को पढ़ न ले, इतना स्ट्रिक्ट।
विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती अदरीजा को अभी भी वो दिन याद है जब उनके दादा उनके साथ किचन में भोजन बनाया करते थे।
उनका जो लास्ट ईयर था 2008 में, मैं उनके साथ थी अमेरिका में जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जब भी उनका डायलिसिस नहीं होता था तो बाबा और मैं दोनों कुकिंग करते थे। वो और हमारी दादी तो बहुत गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि जब बाबा और मैं किचन में रहते थे पूरा किचन हम लोग का गंदा हो जाता था, क्योंकि हम लोग बहुत मैसी थे। चिकन डिशेस, क्योंकि उनको प्रोटीन चिकन पर डे उनका मेजर्ड था, वो सब मेजर्ड करके वो हम लोग अपना कुछ फैंसी फैंसी चीज़ बनाते रहते थे रोज़। हम लोग यहाँ स्विमिंग भी करते थे, स्विमिंग जाते थे यहाँ राष्ट्रपति भवन में इन द समर्स इन द मॉर्निंग्स रोज हम लोग दोनों को उठाते थे, हमारी बड़ी बहन भी, स्विमिंग जाना पड़ता था सुबह 6:30 बजे। उनको वैसे कोई स्टाइल तो नहीं मालूम था, जस्ट लाइक टू बी इन वाटर रिलैक्सिंग, उनको वो पीस ऑफ माइंड मिलता था।
राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है के नारे पर चुनाव लड़ने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों तक उजड़ती झुग्गियों और हाशिए पर चले गए लोगों के लिए काम करते रहे। 1993 में उनके गुर्दे खराब हुए और फिर बाद में उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। 27 नवंबर 2008 को जब मुंबई में आतंकवादी हमला हो रहा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
आखिरी समय डॉक्टर वली देख दाख के ठीक ठाक लेटे हुए हैं, कमरे से निकले अपोलो में, और राज साहब ने कहा उनसे कि डॉक्टर साहब अब आज़ाद कर दीजिए। तो वली साहब दरवाजे तक पहुंच चुके थे, पलटे, आपको पकड़ा किसने है, मुस्कराए और गर्दन ढुलक गई।
रेहान पतल, BBC दिल्ली।